अगला बाब देखते हैं, अल अधियती, कुर्बानी के मसाइल। ईद उल अधा की नमाज पढ़ने और खुतबा सुनने के बाद इस्तेतात रखने वाले पर कुर्बानी सुन्नते मुअक्किदा है। दलील, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो आदमी कुर्बानी करने की इस्तेतात रखता हो फिर भी कुर्बानी ना करे, वो हमारी मस्जिद में ना आए। इसे हाकिम ने रिवायत किया। सुन्नत है, लेकिन कितनी रिकमेंडेड है कि अगर कोई नमाज यानी कोई सुन नहीं इसको अदा करता तो फिर हमारी मस्जिद में ना आए, यानी एक गुस्से का इजहार है इस बात पे कि क्यों नहीं की। जिसे कुर्बानी देना हो वो जिलहज का चांद देखने के बाद कुर्बानी करने तक नाखून और बाल वगैरह ना काटे। इसकी दलील, उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई आदमी जिलहज की 10वीं यानी ईद उल अधा को कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वह अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल ना काटे और ना ही नाखून काटे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। यानी बाज़ औक़ात किसी ऐसे शख्स के लिए एक इत्मीनान कल्ब भी होता है जो कुर्बानी नहीं कर सकता। और एक सहाबी ने यही पूछा था कि अल्लाह के नबी, मैं कुर्बानी नहीं कर सकता, क्या करूँ? तो आपने कहा कि अपने बाल और नाखून छोड़ दो और ईद के नमाज के बाद काटो, तो इंशाल्लाह तुझे कुर्बानी का अजर मिलेगा। ऐसे लगता है कि जैसे गिल्ट से निकालने के लिए या खुशी महसूस करने के लिए। देखिए, असल तो अल्लाह का कुर्ब पाना है ना, कुर्बानी का असल ही कुर्ब है, काफ राबा। और कुर्बानी कहते हैं हर उस चीज़ या उस अमल को जो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए की जाए। एक रिवायत में नमाज को भी कुर्बानी कहा गया, क्योंकि इंसान बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दे के जाए नमाज पे खड़ा होता है। तो लिहाजा कुर्बानी सुन्नत है, इसको अदा करे और बाल वगैरह ना काटे। गाय की कुर्बानी में 7 यानी 7 और ऊँट की कुर्बानी में 10 यानी 10 अफराद शरीक हो सकते हैं। दलील, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह के साथ एक सफ़र में थे कि ईद उल अधा का दिन आ गया तो हम में से गाय की कुर्बानी में 7-7 और ऊँट की कुर्बानी में 10-10 अफराद शरीक हुए। इसे तिरमिजी ने रिवायत किया। ऐसा क्यों हुआ? गरीब और कम पैसे वालों को भी कुर्बानी के अजर में शामिल करने के लिए। एक ही नफली कुर्बानी में ईसाले सवाब के लिए एक या दो या इससे ज्यादा अफराद को अपने साथ शरीक करना जायज़ है। सुभान अल्लाह, कि कोई एक भी नहीं कर सकता तो एक ही में कई शामिल हो जाए, यानी एक बकरा कई लोग मिलके ले ले, ये मुराद है, या एक ही गाय में बहुत सारे लोग मिल जाएं, इससे खास तौर पर यह मुराद होगा। गाय और ऊंट वगैरह जिसमें एक से ज्यादा है। खसी जानवर की कुर्बानी जायज़ है। खसी कौन होता है? यानी जिसको स्टरलाइज कर दिया जाए, यानी जो बच्चे पैदा करने के काबिल ना रहे। मैयत की तरफ से कुर्बानी की जाए तो मैयत को सवाब पहुंच जाता है। इंशाल्लाह। हज़रत आयशा और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी का इरादा फरमाते तो 2 मेंढे ज़िबह खरीदते, मोटे ताज़े सींग वाले, चित कबरे और खसी। इनमें से एक अपनी उम्मत के हर उस शख्स की तरफ से करते जो अल्लाह की तौहीद और रसूल की रिसालत की गवाही देता हो, और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की तरफ से ज़िबा फरमाते। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो गोया कि फिर फौतशुदा लोगों के लिए कुर्बानी की जा सकती है। 2 दांत वाला, जिसको दोंदा कहते हैं, जानवर ज़िबा करना लाजिम है। अगर 2 दांत वाला जानवर ना मिले तो फिर 2 दांतों से कम उम्र वाली भेड़ या दुम्बा ज़िबा करने की रुख्सत है। आपको पता है ना कि जानवरों की उम्र का ताल्लुक है उनके दांतों से। किसी उम्र में 2 आते हैं, फिर 3 या 4, इस तरह। तो इस एक खास उम्र के जानवर को ज़िबा किया जाएगा। हज़रत जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, 2 दांत वाले यानी दोंदा जानवर के अलावा किसी और की कुर्बानी ना करो, अलबत्ता अगर मुश्किल पेश आए तो फिर 2 दांत से कम उम्र, खीरा बोलते हैं इसको, खीरा की भेड़ या दुम्बा ज़िबा कर लो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। हज़रत उकबा बिन आमिर कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह के साथ 2 दांतों से कम उम्र वाले दुम्बे की कुर्बानी दी। इसे निसाई ने रिवायत किया। अब सवाल एक पैदा हो सकता है कि क्यों, कम क्यों, छोटे से क्यों ना हो? अब देखिए कि अल्लाह ताला उनकी नस्ल को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। इस एक खास उम्र तक पहुंचने में हो सकता है कि उसके नुतफे से फिर और जानवर भी दुनिया में आने वाले बन चुके हों, और अगर बहुत छोटों को ही ले लिया जाए तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि आगे से सिलसिला जो है उनका नस्ल का फिर वो रुक जाए। 2 दांत से कम उम्र वाला दुम्बा या भेड़ वो है जिसकी उम्र 1 साल या 1 साल से कम हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। कुर्बानी के लिए दो दांत वाला दोंदा जानवर ही होना जरूरी है। ईद उल अधा के मौके पर 4 दिन तक कुर्बानी करना जायज़ है। ईद का दिन और अय्याम तशरीक 11, 12 और 13 जुलहज के 3 दिन। दलील, जुबैर बिन मुअत्तम रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया यानी अल्लाह के नबी ने, ईद के बाद तमाम अय्याम तशरीक जानवर ज़िबह करने के। यहाँ भी हमारे कल्चर में एक गलत है और वो क्या है कि ईद के बाद सिर्फ 2 दिन, टोटल 3 दिन लेते हैं, हालांकि चौथा भी दिन है। ईद उल अधा की नमाज से कबल अगर किसी ने जानवर ज़िबह कर दिया तो वो कुर्बानी शुमार नहीं होगी। क्या हर्ज है पूछे? हर्ज है ना, यानी पहले कर दिए तो वो हुक्म टूट जाएगा जो अल्लाह का था। हजरत अनस कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अधा के रोज़ फरमाया, जिसने नमाज से कबल जानवर ज़िबह कर दिया इसे दोबारा कुर्बानी देनी चाहिए। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। अपने हाथ से कुर्बानी करना मुस्तहिब है, लेकिन किसी दूसरे से करवाना भी जायज़ है। दलील, जाबिर से हज्जतुलविदा की हदीस में रिवायत है कि रमी के बाद यानी पत्थर मारने जो होते हैं जमरात को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान गाह तशरीफ लाए और 63 ऊँट अपने दस्ते मुबारक से ज़िबह किए। सोचिए आपकी ताकत का अंदाज़ा, 63। मरहले एक को भी ज़िबह करने वाले लोग थक जाते हैं इब्तिदा में, और कहाँ 63। और 37 यानी 37 हज़रत अली को दिए, जिन्हें हज़रत अली ने ज़िबह किया। आपने हज़रत अली को भी अपनी कुर्बानी में शामिल किया। फिर आपने हर ऊँट का टुकड़ा लेने का हुक्म दिया, जिसे हंडिया में डालकर पकाया गया। रसूलुल्लाह और हज़रत अली दोनों ने इसमें से गोश्त खाया और शोरबा पिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। इससे दो तीन बातें मालूम होती हैं। पहली बात है कि अल्लाह के नबी ने एक वक्त में 100 कुर्बानियाँ भी की। हम कितनी करते हैं? एक भी करते हुए पूछते हैं कितनी करें? अच्छा, घर वालों की तरफ से हो, अच्छा क्या हर एक की तरफ से होगी, अच्छा बहुओं की तरफ से भी हो गई, अच्छा शादीशुदा बच्चों की तरफ से भी हो गई। यानी मोहब्बत, जितनी मोहब्बत ज़्यादा उतनी कुर्बानियाँ ज़्यादा होंगी। दूसरी बात पता चली कि कुर्बानी के गोश्त में से खुद भी खाना चाहिए, और हर एक से टुकड़ा क्यों लिया? ताकि हर एक से ये सुन्नत पूरी हो जाए। घर के सरपरस्त की तरफ से दी गई कुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से काफ़ी है। दलील, हज़रत अता बिन जस्सार रहमहुल्ला कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू अयूब अल अंसारी से दरियाफ्त किया कि नबी अकरम के ज़माने में तुम लोग कुर्बानी किस तरह किया करते थे। उन्होंने कहा कि अहदे रिसालत में हर आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक ही कुर्बानी दिया करता था। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। अब इसको भी समझ लेते हैं, कुछ लोग पूछते हैं मसलन इस पे अमूमन जो सवाल पूछे जाते हैं, एक तो वो यही है कि शादीशुदा बेटे हैं जिन रहते साथ हैं लेकिन अलग फैमिली है, क्या उनकी तरफ से भी होगा? फिर एक बहुत मारूफ सवाल इस मौके पे पूछा जाता है, और वो क्या कि औरत कमाती है तो क्या फिर वो अपनी तरफ से करेगी कि मर्द ही के माल पे से लेगी? तो इसको समझ लेते हैं। पहली बात यह कि कुर्बानी जो है ना, ये तोहफा है, गिफ्ट है, फ़र्ज़ नहीं है। कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, ये मोहब्बत के तोहफे हैं। आप किसी जगह जाते हैं, एक गिफ्ट देते हैं ना सारे घर की तरफ से, शादी में गए, कहीं पार्टी में गए, कोई भी मौका था, लेकिन कहीं जाते हैं वहाँ ताल्लुक़ कितना ज़्यादा होता है कि आप घर के एक एक फ़र्द की तरफ से देते हैं। बस यही है कुर्बानी, जो जितनी करेगा उसको उतनी मिलेगी, ठीक है? बाकी औरत ना करना चाहे ना करे, करेगी तो उसको भी अजर मिलेगा। कुर्बानी का जानवर ज़िबह करने से पहले बिस्मिल्लाहिवल्लाहुअकबर कहना मसनून है। दलील, अनस फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने दो सफ़ेद और काले रंग के और सींगों वाले मेंढे ज़िबह किए। मैंने देखा कि आप अपना पाँव इसकी गर्दन पर रखे हुए थे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर अपने हाथ से ज़िबह फरमा रहे थे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। ऐसा लगता है अल्लाह के नबी सल्लम में हर खूबी थी, बड़े से बड़े काम भी करते थे और छोटे से छोटे भी। किसी दूसरे आदमी की तरफ से कुर्बानी के वक्त उस आदमी का नाम लेना सुन्नत है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि कुर्बानी के वक्त रसूलुल्लाह ने मेंढे को पकड़ा, इसे लिटाया, फिर इसे ज़िबह किया और फरमाया, अल्लाह के नाम से, या अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसे कबूल फरमा। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो गोया कि अल्लाह के नबी अपनी उम्मत की तरफ से करते थे, और हमारे लिए ये एक इजाज़त मिल गई कि हम भी दूसरों के लिए कर सकते हैं। कुर्बानी के जानवर को जल्दी जल्दी और अच्छे तरीके से ज़िबह करना चाहिए। दलील, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے حکم دیا کہ جب قربانی کرو تو چھریاں خوب تیز کرو، جانور سے چھپا کر رکھو، اور جب ذبح کرنے لگو تو جلدی ذبح کرو. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. کتنا پیارا اسلام ہے کہ جانوروں تک کے حقوق کو ادا کرواتا ہے کہ سامنے نہ رکھو، ان کو پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح پھر ایک جانور کے سامنے دوسرے کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ اس کو پھر لگے گا کہ اب میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. اب دیکھیے کہ اسلام ذبح کروانا چاہتا ہے اور کتنے سلیقے سے، اور کہاں ایک انسان ایک دوسرے کو ذبح کر دے، اور کہاں بیٹھے بٹھائے ایک عورت کو نکال کے اس کے گھر سے باہر کر دیا جائے. یہ بھی تو ذبح کی کیفیات ہے نا، کہ جہاں ہم سنتوں سے ہٹتے ہیں تو ہماری زندگی میں افراط اور تفریط آنے لگتا ہے. اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر کھڑے کھڑے ذبح کرنا چاہیے. حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کرام اونٹ کو اس حالت میں ذبح کرتے کہ اس کا بایاں پاؤں بندھا ہوتا اور وہ باقی تین پاؤں پر کھڑا ہوتا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. ورنہ کیا ہوگا، بھاگ جائے گا نا. اور اونٹ لٹایا نہیں جاتا، اس کو کھڑا کرتے ہیں، اور اس کو نخر کہتے ہیں. نخر کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی گردن کے پاس یہاں جو رگ ہوتی ہے، یہاں تیر مارا جاتا ہے، تو اس سے پھر وہ اس کا تھوڑا خون بہ جاتا ہے، تو پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور کھڑے کر کے کیا جاتا ہے لٹانے کی بجائے. قربانی کے لیے ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے نکلنے والا مردہ بچہ ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے، کیونکہ جو ماں کا ذبیحہ ہے وہ بچے کا بھی ذبیحہ ہوگا. جو شخص مردہ بچہ کھانا پسند نہ کرے تو وہ نہ کھائے، اس میں کوئی حرج نہیں. دلیل، حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم بعض اوقات اونٹنی یا گائے یا بکری ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں مردہ بچہ پاتے ہیں، اسے پھینک دیں یا کھا لیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو کھا لو، کیونکہ اس کی ماں کو ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. ہاں ایک صورت ہے کہ بچہ زندہ نکل آیا اندر سے، ابھی اس پہ ماں کے مرنے کا اثر نہیں ہوا، تو پھر اس بچے کو ذبح کرنا لازم ہوگا، پھر ویسے نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. قربانی کا گوشت حسب ضرورت کھانا، صدقہ کرنا اور ذخیرہ کرنا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے تمہیں مدینہ میں بعض محتاج لوگوں کے آنے کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے روکا تھا، لہٰذا اب کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی کچھ سارا بھی کھانا چاہے کھا سکتا ہے، بڑی فیملی ہے تو اس کو لے لے، کچھ صدقہ کر دے ٹھیک ہے، کچھ رشتہ داروں کو دے دے، کچھ کر دے، سب کچھ ٹھیک ہے. یعنی گوشت کے تین حصے عموماً کیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی ایک لائن نہیں کھینچی گئی، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. سارا آپ کھا لیں کھا لیں، سارا صدقے میں دے دیں دے دیں، سارا رشتہ داروں کو دے دیں تو دے سکتے ہیں، کچا دیں، پکا کے دیں، کسی بھی طور پہ دے سکتے ہیں. قربانی کے جانور سے کوئی چیز قصاب یعنی بچر کو بطور اجرت دینا منع ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے قربانی کے اونٹ پر نگرانی کے لیے کھڑا ہونے اور ذبح کرنے کے بدلے میں قصاب کو اس سے کچھ نہ دینے کا حکم دیا. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی بیچا نہیں جا سکتا قربانی کا گوشت. کانا، بیمار، لنگڑا اور بوڑھا جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا منع ہے. دلیل، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. کانا جانور، یعنی جس کی ایک آنکھ نہ ہو، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور بوڑھا یا دبلا پترا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی جو بالکل چھوٹا ہے وہ بالکل کفایت نہیں کرے گا،